नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Not G के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, डैन एक्स सोलो की 8 Novo टाइपोग्राफिक ऑर्नामेंट्स डोवर पिक्टोरियल आर्काइव श्रृंखला का एक दृश्य संदर्भ ग्रंथ है। यह कोई शैली इतिहास की विस्तृत व्याख्या या डिजाइन सिखाने वाली क्रमबद्ध पाठ्य पुस्तक नहीं, बल्कि 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी के आरंभिक दौर के मुद्रण नमूना कैटलॉगों से चुने गए अलंकरणों का संग्रह है। इसमें 800 से अधिक प्रमाणिक कॉपीराइट मुक्त आकृतियां दी गई है, पुष्पीय रूपांकनों, लहराती वनस्पति रेखाओं, स्ट्रॉलों, मालाओं, सीमाओं, छोटे सजावटी चिन्हों, पशु आकृतियों, स्त्री रूपों, करुबों और गार्गोयलों के माध्यम से पुस्तक 8 Novo की सजावटी भाषा को सीधे उपयोग योग्य रूप में सामने रखती है। सोलो का उद्देश्य उन टाइपोग्राफिक अलंकरणों को फिर से उपलब्ध कराना है जो कभी अमेरिकी और यूरोपीय मुद्रकों के कैटलॉगों में मिलते थे, पर बाद में सामान्य उपयोग से लगभग गायब हो गए। स्पष्ट श्वेत श्याम प्रस्तुति इस संग्रह को प्रिंटरों, ग्राफिक डिजाइनरों, पुस्तक निर्माताओं, साइन कलाकारों और शिल्प आधारित परियोजनाओं के लिए व्यावहारिक बनाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मुद्रण नमूना कैटलॉगों से बचाया गया प्रमाणिक दृश्य अभिलेख। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी स्रोत आधारित प्रकृति है। डैन एक्स सोलो ने 8 Novo जैसी दिखने वाली आधुनिक सजावटें तैयार करने के बजाय पुराने अमेरिकी और यूरोपीय टाइप फाउंड्रियों तथा मुद्रकों के नमूना कैटलॉगों से वास्तविक अलंकरण चुने हैं। इसलिए यह संग्रह केवल शैली का अनुमान नहीं देता, बल्कि उस दौर में व्यावसायिक मुद्रण के लिए उपलब्ध दृश्य सामग्री का प्रमाण भी बनता है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में टाइपोग्राफिक ऑर्नामेंट अलग धातु ब्लॉकों या सजावटी इकाइयों के रूप में काम करते थे। वे पाठ के आरंभ, विज्ञापन के विभाजन, पृष्ठ सीमा, शीर्षक और रिक्त स्थान को दृश्य रूप से व्यवस्थित करते थे। पुस्तक यह समझने में मदद करती है कि 8 Novo का प्रभाव केवल बड़े पोस्टरों या चित्रकला तक सीमित नहीं था, बल्कि रोजमर्रा के मुद्रित संचार में भी उतर चुका था। इसके चयन में वनस्पति, मानव रूप, पशु और वास्तु सदृश विचित्र आकृतियों का साथ दिखता है, जिससे शैली की व्यापक शब्दावली सामने आती है। संग्रह का अभिलेखीय मूल्य इसी में है कि यह भूली हुई मुद्रण सामग्री को अलग अलग उदाहरणों के बजाय एक सुलभ दृश्य भंडार के रूप में रखता है। उपयोगकर्ता किसी रूपांकन को अपनाने के साथ उसके ऐतिहासिक उपयोग संदर्भ को भी ध्यान में रख सकता है। दूसरा, प्राकृतिक वक्रों और सजावटी लय की 8 Novo शब्दावली। पुस्तक में 8 Novo की पहचान बनाने वाले रूपांकन बार बार दिखाई देते हैं, जैसे फूल, पत्तियां, बेले, घुमावदार तने, तरंग जैसी रेखाएं, स्क्रॉल और पुष्पमालाएं। इनका महत्व केवल सजावटी विषय होने में नहीं है। इन आकृतियों में सीधी, कठोर और अलग थलग ज्यामिति के स्थान पर गति, वृद्धि और निरंतरता का आभास पैदा किया जाता है। एक सीमा रेखा भी केवल किनारा नहीं रहती, वह पृष्ठ के भीतर नजर को आगे ले जाने वाली लय बन सकती है। छोटे स्पॉट, प्रतीक और कोने के चिन्ह बड़े तत्वों के बीच दृश्य विराम देने का काम करते हैं। दूसरी ओर, करूब, स्त्री रूप, पशु और गार्गोयल जैसे चित्रात्मक तत्व बताते हैं कि 8 Novo अलंकरण शुद्ध अमूर्तन तक सीमित नहीं था। वह प्रकृति, मिथकीय संकेत और सजावटी कल्पना को एक ही मुद्रण भाषा में मिला सकता था। श्वेत श्याम छपाई में ये डिजाइन विशेष रूप से रेखा, ठोस काले आकार और खाली स्थान के संतुलन पर निर्भर करते हैं, इसलिए संग्रह डिजाइनर को रंग हट जाने पर भी प्रभाव बनाए रखने की विधि देखने देता है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो 8 Novo को केवल घुमावदार सजावट मानने के बजाय अनुपात, पुनरावृत्ति और पृष्ठ संरचना की संगठित प्रणाली के रूप में समझना चाहते हैं। तीसरा, टाइपफेस के साथ अलंकरण का संबंध और पृष्ठ की दृश्य एकता। 8 Novo टाइपोग्राफिक ऑर्नामेंट्स का व्यावहारिक केंद्र बिंदु यह है कि अलंकरण को अक्षरों से अलग सजावट नहीं माना गया है। पुराने मुद्रण में शीर्षक, प्रारंभिक अक्षर, सीमा और छोटे विभाजक चिन्ह मिलकर पृष्ठ की एक संयुक्त दृश्य पहचान बनाते थे। पुस्तक विशेष रूप से ऐसे अलंकरण प्रस्तुत करती है जिन्हें ओरियोल, बाल्दुर, कोर्डोवा और मेट्रोपॉलिटन जैसे 8 Novo प्रभाव वाले टाइपफेसों के साथ जोड़ा जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर सजावट हर अक्षर शैली के साथ काम करेगी। किसी टाइपफेस की रेखा यदि पतली और प्रवाही है तो बहुत भारी, घनी या अत्यधिक चित्रात्मक सीमा शीर्षक को दबा सकती है। इसी तरह छोटा चिन्ह पाठ के खंडों को अलग कर सकता है, जबकि बड़ी माला या कार्टून शीर्षक को केंद्रित कर सकती है। संग्रह से चयन करते समय आकार, रेखा की मोटाई, रिक्त स्थान और पुनरावृत्ति पर विचार जरूरी है। पुस्तक तैयार लेआउट के नियम नहीं देती, पर इसके अनेक उदाहरण उपयोगकर्ता को घटकों के स्तर पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, यही इसकी उपयोगिता है। डिजाइनर केवल सुंदर आकृति नहीं चुनता, बल्कि यह तय करता है कि वह आकृति पाठ की पदानुक्रम, पठनीयता और कालसंगत वातावरण में क्या भूमिका निभाएगी। चौथा मिरर इमेज और मॉड्यूलर रूपांकनों से बढ़ती उपयोगिता। इस संग्रह की एक ठोस कार्यात्मक विशेषता कई डिजाइनों के मिरर इमेज का शामिल होना है। किसी एक दिशा में मुड़ी बेल, पक्षी, स्क्रॉल या आकृति को जब उसका उल्टा रूप भी मिल जाए तो उसे सममित शीर्षक फ्रेम, आमने सामने के कोने, द्वार जैसी सीमा या केंद्र से बाहर फैलती रचना में आसानी से रखा जा सकता है। यह सुविधा उस ऐतिहासिक मुद्रण तर्क को भी दर्शाती है जिसमें सीमित संख्या के सजावटी ब्लॉकों से अनेक संयोजन बनाए जाते थे। रूपांकन को एक बन चित्र के बजाय मॉड्यूल की तरह देखने पर उसका उपयोग बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए एक छोटा स्पॉट अनुच्छेदों के बीच विभाजक हो सकता है, वही कई बार दोहराकर पट्टी बना सकता है और दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विस्तृत बॉर्डर का हिस्सा बन सकता है। हालांकि इस लचीलेपन का अर्थ असीमित सजावट नहीं है। आर्ट नोवो की प्रवाही भाषा तभी प्रभावी रहती है जब दोहराव में लय हो और मुख्य पाठ पर्याप्त खुला स्थान पाए। पुस्तक के साफ श्वेत श्याम चित्र उपयोगकर्ता को इन रूपों को ट्रेस करने, स्कैन करके डिजिटल कार्यप्रवाह में ढालने या हाथ से पुनर्निर्मित करने की सुविधा देते हैं। इस प्रकार यह संग्रह प्रेरणा स्रोत होने के साथ रचना निर्माण के लिए वास्तविक घटकों की लाइब्रेरी भी बन जाता है। अंत में कॉपीराइट मुक्त सामग्री और समकालीन डिजाइन में जिम्मेदार पुनर्प्रयोग। पुस्तक में शामिल चित्रों को कॉपीराइट मुक्त स्रोत सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है और यही बात इसे सामान्य कला पुस्तक से अलग व्यावहारिक दर्जा देती है। कलाकार, प्रिंटर और डिजाइनर इन ऐतिहासिक रूपांकनों को मेनू, पोस्टर, हैंडबिल, विज्ञापन, पुस्तक आवरण, निमंत्रण या शिल्प परियोजनाओं में प्रयोग करने के आधार के रूप में देख सकते हैं। फिर भी उपयोगिता का सर्वोत्तम रूप सीधा और अनियंत्रित चिपकाव नहीं बल्कि संदर्भपूर्ण चयन है। पुराने अलंकरण मूलतः सीमित रंगों, लेटर प्रेस प्रक्रियाओं और अपेक्षाकृत छोटे मुद्रित प्रारूपों के लिए विकसित हुए थे। आज के डिजिटल माध्यम में उन्हें बहुत बड़ा करने, अत्यधिक दोहराने या असंगत आधुनिक फोंटों के साथ रखने पर उनकी बारीकी खो सकती है। इसलिए संग्रह का अध्ययन यह सिखाता है कि पुनर्प्रयोग में रेखा की गुणवत्ता, पैमाना और माध्यम महत्वपूर्ण है। समकालीन डिजाइनर किसी रूपांकन को ज्यों का त्यों इस्तेमाल कर सकता है, उसे नए लेआउट में संयोजित कर सकता है या उसकी संरचनात्मक भाषा से प्रेरित नई रचना बना सकता है। पुस्तक का मूल्य इसी संतुलन में है। यह ऐतिहासिक सामग्री तक पहुंच आसान करती है पर साथ ही दिखाती है कि शैलीगत प्रामाणिकता केवल पुरानी आकृति लेने से नहीं उसके अनुपात और उपयोग की समझ से आती है। निष्कर्ष में आर्ट नोवो टाइपोग्राफिक ऑर्नामेंट्स उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें सीधे उपयोग में आने वाली ऐतिहासिक दृश्य सामग्री चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर, लेटर प्रेस और पुस्तक कला के विद्यार्थी, टाइपोग्राफी में रुचि रखने वाले प्रिंटर, साइन तथा पैकेजिंग कलाकार, कोलाज और पेपर क्राफ्ट बनाने वाले लोग और आर्ट नोवो संदर्भ खोज रहे शोधार्थी इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ किसी सिद्धांत को विस्तार से पढ़ने में नहीं बल्कि प्रमाणिक रूपों को ध्यान से देखने, तुलना करने और चयन की दृष्टि विकसित करने में है। पाठक समझ सकता है कि एक छोटा डिंगबैट, एक पुष्पीय कोना या एक विस्तृत सीमा पाठ के वातावरण और पदानुक्रम को कैसे बदल देती है। समान श्रेणी की अनेक डिजाइन पुस्तकें आर्ट नोवो से प्रेरित आधुनिक पैटर्न देती है, रंगीन कला प्लेटों पर केंद्रित रहती है या शैली का सामान्य इतिहास बताती है। सोलो की पुस्तक अलग है क्योंकि इसका केंद्र वास्तविक टाइपोग्राफिक अलंकरण है जो ऐतिहासिक नमूना कैटलॉगों से लिया गया और कार्यकारी मुद्रण की जरूरतों से जुड़ा था। 800 से अधिक श्वेत श्याम कॉपीराइट मुक्त रूपों का संकलन इसे प्रेरणा पुस्तक से आगे ले जाकर उपयोगी संदर्भ संग्रह बनाता है। इसकी सीमा भी स्पष्ट है, यह आर्ट नोवो के सामाजिक, कलात्मक या तकनीकी इतिहास का गहन विश्लेषण नहीं देती लेकिन जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है अर्थात दुर्लभ सजावटी मुद्रण भाषा तक पहुंच और उसका पुनर्प्रयोग, उसमें इसकी संक्षिप्त, केंद्रित और अभिलेखीय प्रकृति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं दान XOLO, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।